एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में उतरेंगे जो एक ही साथ मजेदार है, गहरा है और बहुत उलझा हुआ भी है।
हाँ बिल्कुल,
हम बात कर रहे हैं आयरिस मर्डॉक के पहले उपन्यास अंडर द नेट की।
आयरिस मर्डॉक 20वीं सदी की एक कमाल की शख्सियत
थी ना, मतलब एक तरफ वो ऑक्सफोर्ड में दर्शन शास्त्र पढ़ा रही हैं
और दूसरी तरफ बेस्टसेलर उपन्यास लिख रही हैं। ये हुनर तो बहुत ही कम लोगों में होता है।
सही बात है, और उनके उपन्यासों में ये दोनों दुनियाएं, मतलब दर्शन और कहानी, आपस में घुल मिल जाती हैं।
और अंडर द नेट भी कोई सीधा साधा उपन्यास नहीं है। 1954 में छपी ये किताब हमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद के लंदन और पेरिस की वो जो बोहेमियन दुनिया थी उसमें ले जाती है,
जहां कलाकार, लेखक, विचारक सब बिना किसी तय रास्ते के अपनी जिंदगी जी रहे हैं।
हाँ,
और इस उपन्यास का जो शीर्षक है अंडर द नेट,
जाल के नीचे।
हाँ, जाल के नीचे, यही इसकी आत्मा है। ये जाल क्या है? ये है भाषा, सिद्धांत, फलसफे।
वो सारे अमूर्त विचार जिन्हें हम दुनिया को समझने के लिए एक तरह से बुनते हैं।
बिल्कुल, मर्डॉक यहां दार्शनिक विट्गेनस्टाइन से प्रभावित थी, जिनका मानना था कि भाषा अक्सर सच्चाई को पकड़ने की बजाय उससे फिसला देती है।
तो ये उपन्यास एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है।
और उस इंसान का नाम है जेक डोनागू।
जेक एक ऐसा लेखक जो है तो बहुत होशियार, बातों का जादूगर, लेकिन उतना ही आलसी, हमेशा कड़का रहता है।
और जिम्मेदारियों से तो कोसों दूर भागता है।
कहानी की शुरुआत ही एक झटके से होती है। जेक अपनी दोस्त मैज के फ्लैट में मुफ्त में रह रहा है।
और एक दिन अचानक मैज उसे घर से बाहर निकाल देती है।
बस
और बस यही एक घटना जेक और उसके वो जो सीधा साधा वफादार चचेरा भाई है फिन,
हाँ फिन,
उन दोनों को लंदन की सड़कों पर एक ऐसी यात्रा पर धकेल देती है जो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है।
और यहीं से हमें जेक के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिलता है।
और उसकी सबसे बड़ी समस्या वो बाहरी नहीं है, वो उसके अंदर है। वो असल दुनिया में कम, अपने दिमाग में ज्यादा रहता है।
मतलब हर चीज के लिए एक थ्योरी, एक कहानी बना लेना।
हाँ, वो लोगों को वैसे नहीं देखता जैसे वे हैं,
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उन्हें अपनी कहानी का एक किरदार बना लेता है।
और उसके किरदारों की दुनिया भी बड़ी दिलचस्प है। उसकी जिंदगी के केंद्र में तीन लोग हैं जिनके इर्द गिर्द उसने एक पूरा माया जाल बुन रखा है।
सबसे पहले है एना क्विंटन, जेक की पुरानी प्रेमिका, एक गायिका।
जेक के दिमाग में एना एक देवी जैसी है, एक रहस्यमयी खूबसूरत आवाज जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। वो असल में एना से प्यार नहीं करता।
नहीं, वो एना के अपने बनाए हुए ख्याल से प्यार करता है।
फिर है एना की बहन सैंडी क्विंटन,
एक ग्लैमरस और सफल फिल्म स्टार। जेक को लगता है कि सैंडी चालाक है और हमेशा कोई ना कोई चाल चलती रहती है।
और तीसरा और शायद सबसे अहम किरदार, ह्यूगो बेलफाउंडर,
एक अजीब सा आदमी जो पहले दार्शनिक था लेकिन अब पटाखे बनाने का काम करता है।
और जेक के दिमाग में ह्यूगो एक मास्टरमाइंड है, एक कठपुतली चलाने वाला जो पर्दे के पीछे से सबकी जिंदगी के धागे खींच रहा है।
उसे पूरा यकीन है कि ह्यूगो, सैंडी और अन्ना के बीच कोई गहरी साजिश चल रही है और वो खुद उस साजिश का शिकार है।
और यही उसकी पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है।
और इसी गलतफहमी के चलते वो अन्ना को ढूंढने निकलता है और ह्यूगो के दफ्तर पहुंच जाता है।
और वहां उसकी मुलाकात सैंडी से होती है
और वो तुरंत अपने दिमाग में कहानी गढ़ लेता है
कि ह्यूगो और सैंडी का चक्कर चल रहा है
और ह्यूगो ने उसके दार्शनिक विचार चुरा लिए हैं। उसे अपनी पुरानी किताब द साइलेंसर याद आती है जो उसने ह्यूगो से हुई बातचीत के आधार पर लिखी थी।
हाँ, उसे लगता है कि ह्यूगो ने उसकी प्रतिभा का इस्तेमाल किया है और अब उसे इसका हर्जाना मिलना चाहिए।
तो आप देखिए वो कैसे असलियत के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर अपने दिमाग में एक बिल्कुल नई झूठी कहानी बना रहा है।
और इसी कहानी पर यकीन करके वो एक ऐसा कदम उठाता है जहां से ये उपन्यास एक गहरी ट्रेजेडी से एक जबरदस्त कॉमेडी में बदल जाता है।
और यहाँ कहानी एक ऐसा मजेदार मोड़ लेती है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। वो ह्यूगो से बदला लेने के लिए उसके पालतू कुत्ते को अगवा करने का प्लान बनाता है।
और वो भी कोई मामूली कुत्ता नहीं, मिस्टर मास, जो खुद एक बहुत बड़ा कैनाइन फिल्म स्टार है।
हा हा हा, यही तो इस उपन्यास का कमाल है।
एक लेखक जो खुद को महान दार्शनिक समझता है, वो एक फिल्मी कुत्ते को किडनैप कर रहा है।
फिन की मदद से वो मिस्टर मार्स को अगवा कर तो लेता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो मतलब बहुत ही हास्यास्पद है।
वे उस मशहूर कुत्ते को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसके बालों को डाई करने की कोशिश करते हैं,
और हर कदम पर नाकाम होते हैं। वो सीन पढ़ते हुए तो हंसी रोक पाना मुश्किल है,
लेकिन इस हंसी के पीछे एक गहरी बात छुपी है।
हाँ, ये असलियत पर काबू पाने की जैक की सबसे बचकानी और बेताब कोशिश थी।
वो सोचता है कि अगर वो इस कुत्ते को नियंत्रित कर सकता है तो वो अपनी जिंदगी की कहानी को भी नियंत्रित कर लेगा।
पर असलियत तो उसके हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही थी।
बिल्कुल, और असलियत उसे जल्द ही एक बहुत कठोर तरीके से सबक सिखाती है।
जब वो पैसे और छिपने की जगह की तलाश में एक अस्पताल में अर्दली की नौकरी कर लेता है,
ये उसकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है।
हाँ, क्योंकि यहाँ पहली बार उसका सामना ऐसी सच्चाई से होता है जिसे सिद्धांतों में नहीं बांधा जा सकता।
बीमारी, दर्द, मौत।
वो लोगों को मरते हुए देखता है, उनके दुख को महसूस करता है। यहाँ कोई फलसफा काम नहीं आता।
ये अनुभव उसके किताबी घमंड की हवा निकालना शुरू कर देता है। उसे पहली बार जिम्मेदारी का एहसास होता है।
लेकिन जेक अभी भी जेक है ना? असलियत का ये पहला डोज भी उसे पूरी तरह सुधार नहीं पाता।
नहीं, उसकी अगली बेवकूफी तो शायद इससे भी बड़ी थी।
हाँ, बहुत बड़ी। वो सैडी के कुछ खत चुरा लेता है और उन्हें पढ़कर हमेशा की तरह
एक गलत नतीजा निकालता है।
उसे लगता है कि अन्ना पेरिस में किसी मुश्किल में फंसी है और उसे बचाने वाला हीरो सिर्फ वही बन सकता है।
एक और कहानी, खुद को एक शूरवीर समझ रहा है जो अपनी राजकुमारी को बचाने जा रहा है,
और इस ख्याली कहानी के लिए वो अपनी नौकरी, अपने पैसे, सब कुछ दांव पर लगाकर पेरिस भाग जाता है।
और नतीजा,
पेरिस की यात्रा एक पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित होती है। अन्ना वहां है ही नहीं।
तो ये खोज एक मजाक बनकर रह जाती है और वो एक बार फिर टूटा हुआ, खाली हाथ लंदन लौटता है।
ये उसके रोमांटिक भ्रम का अंत था। उसने जिस अन्ना की मूर्ति अपने दिमाग में बना रखी थी वो टूटकर बिखर जाती है।
तो देखिए, एक एक करके उसके बनाए हुए सारे जाल कैसे टूट रहे हैं।
कुत्ते को अगवा करने की साजिश नाकाम हुई, जिससे उसका नियंत्रण का भ्रम टूटा।
अस्पताल की नौकरी ने उसे सिद्धांतों की दुनिया से बाहर निकाला,
और पेरिस की यात्रा ने उसके प्यार के ख्याली पुलाव को जलाकर राख कर दिया।
अब बस आखिरी पर्दा गिरना बाकी था,
और वो पर्दा गिरता है एक फिल्म सेट पर, बड़े ही नाटकीय अंदाज में।
अच्छा,
जेक और उसके कुछ जानने वाले एक ऐतिहासिक फिल्म में एक्स्ट्रा का काम कर रहे होते हैं, और किस्मत देखिए, उसी सेट पर सैंडी और मिस्टर मार्स भी मौजूद हैं।
ये सीन तो कयामत का है।
अपने अहंकार के चरम पर जेक को लगता है कि यही मौका है दुनिया को सच का आईना दिखाने का।
तो उस सेट पर लगे एक लाउडस्पीकर पर चढ़ जाता है
और भीड़ को आजादी और सच्चाई पर एक दार्शनिक भाषण देने की कोशिश करता है,
लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं। वो जिस सत्य की बात कर रहा है उसकी अपनी पूरी जिंदगी ही एक झूठ पर टिकी है।
उसे लगता है वो सबको जगा रहा है, पर असल में वो खुद सबसे गहरी नींद में है।
तो उसका भाषण एक मजाक बनकर रह जाता है और सब कुछ हंगामे में बदल जाता है।
ये उसकी होशियारी का, उसके बौद्धिक अहंकार का सरेआम कत्ल था।
और इसी सार्वजनिक अपमान के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात ह्यूगो से होती है।
ये उपन्यास का सबसे शांत लेकिन सबसे विस्फोटक हिस्सा है।
यहाँ कोई कॉमेडी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, सिर्फ दो लोग हैं और उनके बीच का नंगा सच।
और इस बातचीत में जेक के बनाए हुए सारे महल एक एक करके ढह जाते हैं।
एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते हैं जो जेक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं।
पहला सच, ह्यूगो और अन्ना कभी प्रेमी थे ही नहीं।
क्या?
वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे जो एक दूसरे की खामोशी को समझते थे। जेक की पूरी जलन, उसका पूरा शक बेबुनियाद था।
दूसरा सच क्या था?
दूसरा सच, सैंडी ह्यूगो से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन ह्यूगो के दिल में उसके लिए कुछ नहीं था।
तो जेक की बनाई साजिश की थ्योरी भी यहीं दम तोड़ देती है।
और फिर आता है सबसे बड़ा, सबसे गहरा झटका,
उसकी किताब द साइलेंसर।
हाँ, जिसे वो अपनी महान दार्शनिक कृति समझता था, असल में ह्यूगो के सीधे साधे विचारों की एक बहुत जटिल और गलत व्याख्या थी।
ह्यूगो उसे बताता है कि तुमने मेरे सरल विचारों पर अपनी होशियारी का जाल बुनकर उन्हें बर्बाद कर दिया।
ये वो पल था जहां जेक की सारी होशियारी मिट्टी में मिल गई।
उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी के कई साल एक ऐसे भ्रम में गुजार दिए जिसे उसने खुद ही रचा था।
वो किसी और की साजिश का नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के जाल का शिकार था।
ये उसके लिए परम अपमान का क्षण है, लेकिन मर्डॉक दिखाती हैं कि यही अपमान उसकी मुक्ति भी है।
यहीं पर वो असल में जाल के नीचे आता है।
वो सिद्धांतों की ऊंची उड़ान से उतरकर अनुभव की ठोस खुरदुरी जमीन पर आ खड़ा होता है।
और अब जब कहानी यहां तक पहुंच गई है तो उपन्यास के बड़े विषयों पर बात करना आसान हो जाता है।
सबसे बड़ा विषय तो यही है, भाषा और वास्तविकता के बीच की लड़ाई।
कैसे हम दुनिया को समझने के लिए जो लेबल, जो थ्योरी बनाते हैं, वही हमें असल दुनिया से दूर कर देते हैं।
जेक की पूरी यात्रा अपने दिमाग से बाहर निकलकर दुनिया को उसकी पूरी अराजकता और खूबसूरती के साथ सीधे सीधे अनुभव करने की है।
और दूसरा बड़ा विषय है प्यार का मतलब।
जेक का अन्ना के लिए प्यार, वो प्यार था ही नहीं, वो एक खप था
अपनी ही बनाई एक छवि के लिए। मर्डॉक का मानना था कि सच्चा प्यार दूसरे इंसान को उसकी आजादी और उसके रहस्य के साथ स्वीकार करने में है,
उसे अपनी कहानी का किरदार बनाने में नहीं।
और आखिर में सच्ची आजादी का सवाल।
शुरुआत में जेक सोचता है कि जिम्मेदारियों से भागना ही आजादी है,
लेकिन उपन्यास के अंत तक वो समझता है कि सच्ची आजादी जीवन की अनिश्चितताओं, उसके संयोगों और उसकी जिम्मेदारियों को अपनाने में है, उनसे भागने में नहीं।
और उपन्यास का अंत इसी नई समझ को बहुत खूबसूरती से दिखाता है।
एक बदला हुआ, विनम्र और थोड़ा शर्मिंदा जेक अपनी बिखरी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटना शुरू करता है।
उसे रहने के लिए अपना एक छोटा सा कमरा मिलता है, अस्पताल में एक पक्की नौकरी मिलती है,
और उसकी अन्ना से आखिरी मुलाकात होती है। और शायद जिंदगी में पहली बार वो उसे एक देवी या एक रहस्य के तौर पर नहीं,
बल्कि एक साधारण इंसान के तौर पर देखता है, जिसकी अपनी एक अलग जिंदगी और अपने सपने हैं।
और उपन्यास का आखिरी सीन बहुत ताकतवर है।
जेक अपने नए कमरे में अकेला बैठा है, उसके सामने एक कोरी नोटबुक रखी है।
सालों बाद वो लिखने के लिए तैयार है,
लेकिन इस बार वो दूसरों के विचारों या अपनी थ्योरी से नहीं, बल्कि अपने जिए हुए, महसूस किए हुए अनुभवों से लिखने के लिए तैयार है।
उसका पुराना झूठा सफर पूरा हो गया है, लेकिन उसका नया सच्चा जीवन अभी बस शुरू हो रहा है।
ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि असली बुद्धिमानी दिमाग की चतुराई में नहीं, बल्कि दिल की विनम्रता और ध्यान देने में है,
अपने आसपास की दुनिया और लोगों पर सच में ध्यान देने में।
और शायद सबसे बड़ा सफर अपने ही दिमाग के बनाए जालों से बाहर निकलकर इस खूबसूरत, अराजक और अप्रत्याशित दुनिया में सच में कदम रखना है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।